आर्यन जय को लेकर बाहर निकल चुका था, मगर इंद्र वहीं रुक गया था अपनी बहन के लिए। उसके कदम भारी थे, चेहरे पर गुस्सा और चिंता एक साथ तैर रही थी। वो धीरे धीरे विक्रांत की ओर बढ़ा, जो अपने हाथ पर खुद ही पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो खुद को ही किसी बड़े जख्म से उबार रहा हो। इंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने मेरे भाई को मारा, उनका एक्सीडेंट करवाया। विक्रांत ने एक पल भी नहीं गंवाया, वो बात को बिल्कुल बीच से ही काट गया। कहाँ सबूत है? क्यों मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग? वो पट्टी बांधता ही जा रहा था, मगर उसकी आवाज में बनावटी सा दर्द छलकने लगा था। अब किसी मैकेनिक ने कह दिया कि गाड़ी से छेड़छाड़ हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने की है। पहले खुद पता करो तुम लोग, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे और मत तंग करो। फिर अचानक उसने अपना शोषित पति वाला चेहरा पहन लिया, उसकी आंखों में नकली पानी भराया और उसने जरा धीमी आवाज में मगर तीखेपन के साथ कहा, देखो मुझसे गलती हुई है कि मैंने जैसिका पर हाथ उठाया, मगर उससे पूछो उसने क्या किया। मेरे बच्चे को मार दिया, अबॉर्शन करवा दिया। वो रुककर गहरी दिखावटी सांस लेता है, मानो अपना दुख संभाल नहीं पा रहा हो। मैं अपनी पत्नी से इतना तो कह सकता हूं ना, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेती। मैं इसे कितना चाहता हूं ये मैं ही जानता हूं। मैं एक फैमिली चाहता था इसके साथ, हमारा बच्चा। उसकी आवाज कांप गई, मगर इंद्र की नजरों को साफ दिखाई दे रहा था कि ये कांपना कितना सच है और कितना अभिनय। वो और भी रोने का दिखावा करता हुआ बोला, मैं बहुत टूटा हुआ हूं सच में। तुम लोगों को लगता है ना कि मैं बुरा हूं, मगर मैं सिर्फ अपनी फैमिली चाहता था। इंद्र अपने गुस्से को रोकना चाहता था, मगर उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। वो एक कदम आगे बढ़ने ही वाला था कि जैसिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। चलो बाहर चलो, वो धीरे से बोली और इंद्र को लगभग खींचते हुए बाहर लेकर गई। दोनों भाई बहन लॉन में जाकर बैठ गए। इंद्र ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों से झलक रहा था कि वो अभी भी अंदर से उबल रहा है। जैसिका ने उसके गुस्से को रोकने के लिए नरम आवाज में कहा, देखो वो किसी को मार नहीं सकता। सच है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया, मगर गलती मेरी भी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम एक बार उससे बात करती अबॉर्शन से पहले। इंद्र ने गला साफ किया, शांत आवाज में बोला, अगर तुम डिवोर्स चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। कुछ पल तक जैसिका उसे देखती रही, उसकी आंखें थकी हुई थीं। शायद वो खुद भी तय नहीं कर पा रही थी कि वो सच में क्या चाहती है। वो धीरे से बोली, नहीं मैं तलाक नहीं लेना चाहती, बस मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए उसे नहीं बताया। वो अपनी बाहें मोड़कर बैठ गई, थकी हुई आवाज में बोली, थोड़ी देर बैठो, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा समय चाहिए। इंद्र चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, क्योंकि ये वो पल था जहां उसे सिर्फ बहन की सुननी थी, उसके फैसले को समझना था, चाहे अंदर से वो कितना भी टूटा या गुस्से में क्यों ना हो। फर्श पर बैठकर सानवी और जय एक बड़ा सा पजल जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सैकड़ों टुकड़ों वाला वो पजल बार बार बिखर जाता और दोनों फिर से नई उम्मीद के साथ जोड़ना शुरू करते। जय ने तीसरी बार एक टुकड़ा उल्टा पकड़ा और फिर उलझकर बोला, ये नहीं फिट हो रहा, दीदी से भी नहीं हो रहा। सानवी ने गर्दन उठाकर उसे देखा, भौहें दरेरी और मजाकिया सख्ती से बोली, देखो मिस्टर जय, जब तक ये पजल पूरा नहीं होगा हम कहीं नहीं जाएंगे, समझे? जय चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, यही तो चाहता हूं, आप यही मेरे साथ फंसी रहो। सानवी हंस पड़ी, अगर ये पूरा एक हफ्ता नहीं बना तो? जय ने तुरंत जवाब दिया, जैसे सब पहले से प्लान हो तो एक हफ्ते बाद जाएंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक नहीं जाना, फैसला हो गया। सानवी हंसते हुए हाथ में पकड़ा टुकड़ा नीचे रखती है और उसके सिर को हल्का सा थपथपाती है। बहुत अच्छा प्लान है आपका, बहुत ही समझदार हो रहे हो आप आजकल। जय खुशी से उछलता है, क्योंकि दीदी आज मेरे साथ है। सानवी उसे देखती है, उसकी मुस्कान पूरी तरह सच्ची थी। उस छोटे से कमरे में पजल के टुकड़ों से ज्यादा दो दिलों के बीच की गर्माहट सलीके से जुड़ रही थी। आर्यन लिविंग रूम के एक कोने में साइड वाले सोफे पर बिल्कुल स्थिर बैठा था। उसकी निगाहें सामने दीवार पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और खोया हुआ था। आज उसे अपनी बहन और बहनोई की मौत की असल वजह पता चली थी कि वो कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने करवाया हुआ हादसा था। ये सच उसके सीने में भारी पत्थर की तरह बैठ गया था। सांस लेना मुश्किल, सोच पाना उससे भी मुश्किल। सानवी दूर खड़ी उसे देख रही थी। वो समझ रही थी कि आर्यन को इस वक्त किसी की जरूरत है, पर वो स्पेस भी चाह रहा था। सानवी बार बार उसकी तरफ देखती, फिर नजरें झुका लेती। वो उसके पास जाना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एक अपराध भाव उसे रोक रहा था, क्योंकि उसने भी चुप रहकर आर्यन को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई थी। सानवी ने जय को खाना खिला दिया था। शाम हो चुकी थी और उसे जाना था। जय, मैं चलती हूं, काफी देर हो गई है, उसने धीमे से कहा। जय तुरंत चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा। तो क्या दीदी, आप मुझे छोड़कर ऐसे ही चली जाएंगी? ये तो गलत है, आप यहीं रुक जाओ ना, प्लीज। उसकी आवाज में एक मासूम सी उम्मीद थी। सानवी का दिल पिघल गया, पर वो जवाब देने से पहले एक नजर धीरे से आर्यन पर डालती है, जो अब भी उसी तरह चुप बैठा था। सुन रहा था पर देख नहीं रहा था। नहीं जय, अब मुझे चलना चाहिए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चाहे अंदर से वो खुद भी ना जाना चाहती हो। सानवी जैसे ही मुड़कर जाने लगी, तभी कमरे की चुप्पी को चीरती हुई एक बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज आई, अगर रुक सकती हो तो रुक जाओ। सानवी ठिठक गई। आर्यन ने ना खुद को उठाया ना उसकी तरफ देखा, बस सोफे पर बैठे बैठे इतना ही कहा था। उसकी आवाज में कोई आदेश नहीं था, सिर्फ टूटन, थकान और एक अनकही जरूरत। जहां पर जय अकेला है, वो धीरे से जोड़ता है, मानो खुद को सफाई दे रहा हो, पर अंदर से वो जानता था वो सानवी का रुकना चाहता है। सानवी का दिल एक क्षण को रुक गया। जय की आंखें चमक उठी और हॉल फा माहौल पहले से कहीं ज्यादा भावुक हो गया। देखा, मामू ने भी कह दिया, आप तो रुक जाओ दीदी प्लीज, जय ने सानवी का हाथ पकड़कर इतनी मासूमियत से कहा कि सानवी का ना कहना वैसे भी मुश्किल था। सानवी ने हल्की सी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, रुक जाती हूं। जय के चेहरे पर जो खुशी आई वो देखने लायक थी। वैसे भी सानवी यहां पहले भी जय के साथ कई हफ्तों तक रह चुकी थी, उसे माहौल की आदत थी। सानवी ने पहले जय के कपड़े बदले, उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया, फिर कहानी सुनाकर उसे सुला दिया। जब जय सो गया, कमरे में हल्की हल्की रात की खुशबू फैल रही थी। सानवी धीरे से नीचे आती है। आर्यन घर के अंदर नहीं था, वो बाहर लॉन में ठंडी हवा के बीच अकेला बैठा जमीन की ओर देख रहा था। उसकी पीठ तक देखकर उसका दर्द महसूस हो रहा था। सानवी क्वाइटली उसके पास गई और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुझे शायद ये कहने का हक नहीं है, उसने धीरे से कहा, आवाज बिल्कुल मुलायम, पर फिर भी कहूंगी, खुद को संभालिए, अगर आप खुद को ही नहीं संभालेंगे तो जय का क्या होगा? उसके शब्द चुभे नहीं, बस दिल पर हल्के से रखे गए। आर्यन ने नजरें उठाई, आंखें लाल थीं, गला भरा हुआ था, और फिर बस टूटन की एक लाइन, मैं अपनी बहन को कैसे भूलूं? ये कहते ही उसकी सांस लड़खड़ाई। वो अपनी बहन, बहनोई, उन दोनों को याद करने लगा, जितनी यादें दबा कर रखी थी सब एक साथ बाहर आ गईं। वो अचानक चुप हो गया और फिर रो पड़ा। सानवी धीरे से उठी, उसके पास आकर बगल में बैठ गई। आर्यन ने खुद को रोका नहीं, बस उस पर छुपकर उसके गले लग गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो आर्यन जो हमेशा सख्त, शांत और कंट्रोल में रहता था, आज पहली बार किसी के सामने ऐसे बिखर गया था। सानवी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे थामे रही।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें।